पुस्तक पिता की प्रतिज्ञा, लेखक रॉबर्ट प्रकाश। परिचय, अलौकिक जीवन में एक झलक। चमत्कारों, परमेश्वर के साथ आमने सामने और असंभव कामों के संभव होने की गवाहियों ने मेरे हृदय के अविश्वास को बेद दिया और मेरी आत्मा ललायित हो गई। मेरी आत्मा की अभिलाषा किसी शारीरिक लालसा से और हृदय की हर एक इच्छा से बढ़कर निकली। इस अभिलाषा ने मेरे जीवन को गहराई तक उलट पलट दिया। कुछ लोग इन गवाहियों का मजाक उड़ाकर उन्हें तमाशों से भरे हुए झूठ समझते हैं, लेकिन इन गवाहियों को सच जानने के लिए मुझे अपने से सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आत्मा स्वयं मुझ में रोते हुए गवाही दे रही थी। आंसू मेरे आंखों से गिर रहे थे और जैसे आशा की किरण मेरे हृदय में उदय होने लगी। मैं 400 लोगों के साथ सभा में बैठा था और प्रचारक के हर एक शब्द को चुपचाप सुन रहा था, किंतु मेरी आत्मा बेचैन थी, जैसे पकड़े हुए जंगली जानवर आज़ाद होने के लिए पूरे जोर से लड़ते हैं। वैसे ही मेरी आत्मा उस अद्भुत अनुभव को पाने के लिए पुकार रही थी जो परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति में होता है। यद्यपि मैं बाहरी रूप से बिल्कुल शांत दिख रहा था, पर अंदर मेरा चिल्लाना इतना तीव्र था कि मैं संदेश पर पूरा ध्यान लगा नहीं पाया। मेरा अंतर्मन यह पुकार उठा, प्रभु, मैं इस अभिषेक, उपस्थिति और सामर्थ को चाहता हूँ। मुझे ये चाहिए प्रभु, इसके बिना मैं एक दिन भी जीना नहीं चाहता हूँ। किसी भी हालात में, किसी भी कीमत पर मुझे ये चाहिए। यह गंभीर पुकार आम प्रार्थना से बढ़कर और मेरी समझ के परे थी। ऐसी पुकार जो मन और प्राण की नहीं, पर आत्मा की गहराई की थी, जैसे भूकंप पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर देता है, वैसे ही इस पुकार ने मेरी भीतरी जिंदगी को हिला दिया। यह इच्छा मुझ में इतनी उग्र थी कि मैं डरने लगा। मुझ में विवश करने वाली इच्छा हुई कि मैं खड़ा होकर चिल्लाऊं कि मेरी जलती हुई आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़े। संदेश के बाद थोड़ा समय मिला कि लोग विश्राम करें। जब सब लोग बाहर जा चुके, तब मैं जमीन पर लेटकर रोने लगा। यद्यपि किसी को मालूम नहीं था कि मुझ में क्या हो रहा है, फिर भी प्रभु को मालूम था, क्योंकि उसका ध्यान दीनों और टूटे हृदय वालों पर है। आंसू लगातार गिरते रहे और एक छोटा सा कुंड बन गया। मैंने अपने हृदय में यह ठान लिया कि इस आत्मिक पुकार को संतुष्ट किए बिना मैं इस सभा से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या पवित्र आत्मा किसी को ऐसा विवश कर सकता है कि यीशु के कार्य उस व्यक्ति के जीवन में से सहजता से बहने लग जाए? क्या यह संभव है कि अनगिनत अंधे देखने, बहरे सुनने और अपंग चलने पाए? क्या वह परमेश्वर जो कभी कभी दूर और भाव रहित महसूस होता है, अपने आप को हम पर इस प्रकार प्रकट करे कि हम एक पल में परिवर्तित हो जाएं? मैं जानता हूँ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यही परमेश्वर ने किसी के साथ थोड़ा बड़ा चमत्कार किया है, तब वह मेरे साथ भी चमत्कार करने के लिए बिल्कुल तैयार और इच्छुक है। मेरे हृदय में यह सवाल नहीं था कि क्या पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा, पर सवाल यह है कि क्या उसकी कीमती उपस्थिति को पाने के लिए मेरे पास पर्याप्त व्याकुलता है? रैंडी क्लार्क दुनिया के महान प्रचारकों और शिक्षाओं में से एक हैं। वे सभा में आकर एक और संदेश देने लगे। वे कहने लगे कि परमेश्वर प्यासों को पानी पिलाता है। क्या हम उसके प्यासे हैं? धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे संतुष्ट किए जाएंगे। मत्ती 5:6। शारीरिक भूख है और भावनात्मक भूख भी है, पर आत्मिक भूख जब पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होती है, सबसे भयंकर और खतरनाक होती है। अपनी आत्मिक भूख को बनाए रखना परमेश्वर की ओर खुले हुए दरवाजे के समान है। यदि आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछना पड़ता है कि क्या मैं भूखा हूँ, तब आप भूखे नहीं हैं। जब मैं शारीरिक तरह से भूखा होता हूँ तब मुझे अपने आप से यह पूछने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं भूख को अनुभव कर सकता हूँ। रैंडी क्लार्क ने गवाहियों पर गवाहियाँ बताई कि परमेश्वर ने हाइडी बेकर को और अन्य सेवकों को किस प्रकार खड़ा किया, जिन्होंने देशों को और राज्यों को परमेश्वर की महिमा के लिए बदल दिया। तब प्रार्थना का समय आया कि हम उसे हमारे बीच में आमंत्रित करें, जो अनंत काल की आग से जलता है, कि वह आकर हमें अपनी अग्नि से प्रज्वलित करके हमें अग्नि के सेवक बना दे। यद्यपि कुछ महीनों से मैं परमेश्वर की भारी उपस्थिति और सामर्थ को पाने के लिए भूखा और व्याकुल रह रहा था, फिर भी मैं अनिश्चित था कि मैं अकेला उसे कैसे ग्रहण करने पाऊंगा। मैंने किताबें पढ़ रहा था, वचन पर मन लगा रहा था, पर कई घंटे परमेश्वर को पुकार रहा था, लेकिन मेरे मन की दशा उस खोजे के समान थी जिसने फिलिप्पुस को जवाब देकर कहा, जब तक कोई मेरा मार्गदर्शन ना करे तो मैं कैसे करने पाऊंगा। प्रेरितों 8:30-31। स्वर्ग की बिजली। संदेश के बाद रैंडी ने यह सूचना दी कि हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन शुरुआत से हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको पवित्र आत्मा पहले छुएगा। यदि आप अपने सिर, कंधों, बाहों और हाथों में बिजली की सामर्थ या आग महसूस करेंगे या उसकी भारी उपस्थिति, तब सिर्फ यही लोग पहले आएंगे। जैसे ही रैंडी ने पवित्र आत्मा को बुलाया, एकाएक अजीब सी बिजली मेरे शरीर में बहने लगी। मेरे कंधे, बाह, हाथ और टांग उस बिजली वाली सामर्थ के कारण हिलने लगे। इस घटना से पहले मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को कई रूप में अनुभव किया था, जैसे रोना, दर्शन देखना या अन्य भाषा में बोलना, पर इस बार ऐसी सामर्थ मुझ में बह रही थी जो मैं शारीरिक तरह से अनुभव कर रहा था। यद्यपि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं चाहूँ तो इस सामर्थ के अनुभव का विरोध कर सकता हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं करना चाहा। मैं उसको इतना अधिक चाहता था कि मुझे कोई परवाह नहीं थी कि वह किस तरह से मुझे छुए। थोड़े समय के बाद रैंडी ने कहा, यदि परमेश्वर की उपस्थिति या सामर्थ आपको लग रही है जैसा मैंने समझाया, तो आगे आइए। मैं मंच के सामने आगे आने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा शरीर हिलने के कारण मुझे आगे जाना बहुत कठिन लगा। मैं मुश्किल से छोटे छोटे कदम लेकर आगे आया। जब मैं रैंडी से लगभग 15 फुट की दूरी पर था, तब उसने कुछ कहते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जो मेरे साथ होने वाला था उसके लिए मैं कैसे तैयार हो सकता था? कौन स्वर्ग की बिजली को अनुभव करने के लिए तैयार हो सकता है? एक नाशवान शरीर परमेश्वर की भारी महिमा को कैसे सह सकता है? जैसे ही रैंडी क्लार्क ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, एक अनदेखी सामर्थ मुझसे बहुत शक्ति के साथ टकरा गई और मैं उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। बिजली की लहर सी जो मुझ में बह रही थी वह और अधिक मजबूत हो गई और मेरा शरीर यहाँ तक भयंकर रीति से हिलने लगा कि मेरे हाथ अस्पष्ट दिखाई देने लगे और सांस लेना मुश्किल होने लगा। इस भारी अनुभव के होने से पहले मैंने पुकार कर कहा था, और अधिक दे प्रभु, मुझे और चाहिए। लेकिन इस समय मैं सोचने लगा, अरे यह तो बहुत ज़्यादा है, क्या मैं इसे सह सकता हूँ? मेरी टांगे और पैर यहाँ तक हिलने लगे कि मेरे जूते जो ठीक से बंधे हुए थे निकल कर उड़ गए और 20-30 फुट जा गिरे। जब मैं प्रभु से और अधिक सामर्थ के लिए मांग रहा था, मुझे वास्तव में मालूम नहीं था कि मैं क्या मांग रहा हूँ। मुझे इतना मालूम था कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैंने चाहा कि वह बहुमूल्य व्यक्ति जिसका नाम पवित्र आत्मा है मेरे जीवन में वास्तविक हो जाए। मुझे मानसिक तरह से मालूम था कि पवित्र आत्मा मुझ में है, पर धार्मिक ज्ञान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे उसके वास्तविक अनुभव की आवश्यकता पड़ी। इस बात को छोड़ इस जीवन में सब कुछ व्यर्थ और खाली है। उसके बिना जीवन ऐसा है जैसे भारतीय भोजन मसाले के बिना। पवित्र आत्मा मेरी दृष्टि में सब कुछ है। जब मैं जमीन पर लेटे हुए हिल रहा था, मैं बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। मेरी कमीज पसीने से भीग गई। उस सभा में पर्याप्त एसी था, पर वह सामर्थ्य जो मुझ में थी आग की जैसी थी। मेरी अवस्था शांत नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैं चिल्ला रहा था, हिल रहा था, और मेरे लिए सांस लेना भी कठिन था। मेरी शारीरिक दशा बहुत ही बुरी दिख रही थी, लेकिन मेरी भीतरी स्थिति विपरीत थी। अंदर से मैं बिल्कुल शांति में था, जैसा तूफान समुद्र में खतरनाक लहरों को उत्पन्न करता है, वैसे ही मेरा शरीर था। लेकिन उसी समुद्र के अंदर पूरी शांति होती है, वैसे ही मेरी आत्मा शांति महसूस कर रही थी। सामर्थ्य का बहना और हिलना रुका नहीं। मेरा शरीर दर्द करने लगा, खासकर मेरे जोड़। क्यों? क्या परमेश्वर मुझे चोट लगाने की कोशिश कर रहा था? इसी समय मैं थोड़ा सा डरने लगा और हाफते समय चिल्लाने लगा, प्रभु और अधिक ना दे, मैं और अधिक सहन नहीं कर सकता हूँ। पर वह स्वयं जानता था कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। कभी कभी लोग पूछते हैं, जब पवित्र आत्मा लोगों पर प्रकट होता है तब वे क्यों गिरते या हिलते हैं? मेरा व्यवहारिक उत्तर यह है कि एक गिरा हुआ नाशवान शरीर स्वर्गीय महिमा को सह नहीं सकता। यदि परमेश्वर अपनी महिमा की भरपूरी में किसी पर आएगा, तब उस व्यक्ति के शरीर का अंत होना निश्चय है। याद रखना कि हमारा शरीर मिट्टी ही है। सामर्थ्य की यह लहर कभी कभी मुझ में कम होने लगती, पर थोड़े देर फिर बढ़ने लगती। लगभग 30-40 मिनट बीत गए, तब प्रभु दर्शन के द्वारा मुझसे बात करने लगा। वह अलग अलग देश के लिए अपने प्रेम और दया के बारे में मुझे समझा रहा था। मैंने एक बात ध्यान से देखी कि जब कभी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अभिषेक करता है, तो उस अभिषेक के साथ साथ वह हमेशा अपनी तरस से भी भर देता है, क्योंकि सामर्थ्य के बिना तरस बेबस है। लेकिन तरस के बिना सामर्थ्य स्वार्थीपन का और मनुष्य की महिमा का कारण बन जाती है। ये दो चीजें, सामर्थ्य और तरस, आत्मा की दो धारी तलवार हैं। 50 मिनटों के बाद सामर्थ्य का बहना और मेरे शरीर का हिलना दोनों बंद हो गए। जमीन पर लेटे हुए मैं ये सोचने लगा, ऐसा लगता है कि जो मैंने मांगा वो मिल गया। यदि यह अनुभव परमेश्वर की ओर से था, तो अवश्य है कि यह फल आएगा। मैं आत्मिक अनुभव को बहुत कीमती समझता हूँ, पर यदि उसका कोई फल नहीं होता है, तब मैं संदेह करता हूँ कि सचमुच वह परमेश्वर की ओर से था कि नहीं। असंभव काम आम तरह से होने लगे। उस घटना के बाद मैं विश्वास के बड़े कदम उठाने लगा और विश्वास के ऐसे काम करने की कोशिश करने लगा जो मैं पहले साहस की कमी के कारण नहीं कर पाया। लोगों ने मुझे मिरज महाराष्ट्र में 3 दिन की चंगाई सभा चलाने के लिए बुलाया। पहले दिन 300 लोग आए। वहां परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई और बहुत चमत्कार हुए। सभा के दूसरे दिन हम शाम तक खाली थे और कुछ विश्वासियों ने हमें अपने घर खाने के लिए बुलाया। हम होटल से होकर रास्ते पर जा रहे थे। मैं एक पुरानी वैन में पीछे बैठा था। वैन के शॉकर बहुत पुराने थे और हम झटकों के साथ जा रहे थे। चलते चलते मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, केवल बाहर देख रहा था। जब हम मेन हाईवे से निकलकर मुड़ने लगे, तब मैंने ध्यान से 2 लड़कों को देखा जो हाईवे डिवाइडर पर बैठे थे। हाईवे डिवाइडर 6 फुट चौड़ा था और उस पर 3 पेड़ और घास लगी थी। उनको देखते ही पवित्र आत्मा मुझ में कूद गया और मुझे उसकी उत्तेजना महसूस हुई। मैं जल्दी देखा कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को हाथ से इशारे से कुछ कहा। उसी वक्त मैं उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, रुको रुको। ड्राइवर ने डर के मारे तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी रोड के किनारे रुक गई। ड्राइवर पीछे मुड़कर देखने लगा, क्या हुआ? मैं अपने दोस्त स्तवन की तरफ मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि उन लड़कों में से कोई बहरा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम वैन से निकलकर सड़क पार कर उनसे मिले। लड़के लगभग 27-28 सालों के थे और वे मुझे घूर रहे थे। मिलने पर मैंने उनसे पूछा कि यदि कोई बहरा है तब मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन दोनों ने अपने कान और मुंह की ओर इशारा करके अपने हाथ हमारे सामने हिलाए। उनकी बात का मतलब ना समझते हुए मैंने उनसे दोबारा पूछा और उन्होंने उसी तरह जवाब दिया। स्तवन ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये दोनों बहरे और गूंगे हैं, ये सुन नहीं सकते और ना बोल सकते हैं। मैंने उत्साहित होकर अपने हाथों के द्वारा उनको यह समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, पर वे नहीं समझे। तब मैंने अपनी उंगलियां एक लड़के के कान में डाली। जो कुछ मैं कर रहा था उसके कारण वह असमंजस में था। तब मैंने प्रार्थना की, यीशु के नाम में मैं इस पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप को तोड़ देता हूँ, बहरी आत्मा इनमें से इसी वक्त निकल जा। तुरंत मैंने अब उंगलियां निकालकर उनके कानों के पास चुटकियां बजाई। वह चकित हुआ कि वह सुनने लगा। जब जब मैंने चुटकियां बजाई उसके सिर हिलाकर स्वीकार किया कि वह सुन सकता है। मैं चुटकियां बजाते हुए दूर जा रहा था तब अचानक एक बस हॉर्न मारते हुए वहां से गुजरी और वह अत्यंत डर गया। मैंने सोचा कोई आश्चर्य नहीं कि वे ऐसे शोरगुल के स्थान पर बैठे हुए थे क्योंकि वह बहरे थे। तब मैंने अपना हाथ उनके मुंह पर रखा, गूंगी आत्मा उसे छोड़कर निकल जाए। प्रार्थना के बाद मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मम्मा पापा। उसने वही साफ साफ दोहरा दिया। तब मैं गिनने लगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और उसने वही कहा, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने उसके दोस्त की ओर देखा कि वह बिल्कुल चकित था कि उसका दोस्त बोलने और सुनने लगा। तब मैंने कहा, आपकी बारी आ गई है। मैंने अपनी उंगलियां उसके कानों में डालकर वही प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद मैं उसके सुनने को चुटकियां बजाने के द्वारा परखने लगा, लेकिन उसने हाथ से समझाया कि कुछ नहीं सुनाई पड़ा। मैंने दोबारा प्रार्थना करा और कहा, बहरी आत्मा इनमें से निकल जा, मैं श्राप को यीशु के नाम में तोड़ देता हूँ। मैंने दोबारा परखा पर सफल नहीं हुआ, वह फिर भी बहरा था। यहाँ अधिकतर विश्वासी लोग अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को खो देते हैं और शैतान उनके पास खड़े होकर बहाना देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत कहते हैं, परमेश्वर की मर्जी नहीं है इसलिए वह चंगा नहीं हो पा रहा, या दूसरे लोग कहते हैं यह बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है, उपवास और बहुत प्रार्थनाओं के बाद हम ऐसी दुष्ट आत्मा को निकाल पाएंगे। शायद कोई और कहता है यह बहरापन उस व्यक्ति का क्रूस है जो परमेश्वर ने उसे दे दिया। ये सारे विचार और कहावत विश्वास में धीरज ना रखने के लिए बहाने हैं। क्या परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया? क्या उसकी इच्छा सबको चंगा करने की है? क्या पवित्र आत्मा सुसमाचार के कामों के लिए मुझ पर उपस्थित है? इन सारे सवालों का उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। तब मैंने तीसरी बार उंगलियां डालकर प्रार्थना की, शैतान मैंने तुझको आज्ञा दी है कि तू निकल जा, मैं विश्वास में उस आज्ञा पर खड़ा हूँ, इसमें से निकल जा, बहरे कान यीशु के नाम से खुल जा। इस बार उसके कान तुरंत खुल गए। आप एक बहरे को चंगा होकर सुनते हुए तुरंत पहचान सकते हैं, उसका चेहरा और आँखें गवाह हैं। उसके बोलने के लिए प्रार्थना करने के बाद वह भी साफ साफ बोलने लगा। यद्यपि वे सुनने और बोलने लगे फिर भी वे मेरे शब्दों की आवाज़ समझ नहीं सके। मैंने उनको बताना चाहा कि यीशु ने ही उन्हें चंगाई दी है। समझाने की कोशिश करने के बाद स्तवन को पता चला कि वे ऐसे खास स्कूल में पढ़ाई करते थे जहाँ बहरे गूंगे बच्चे लिखना और पढ़ना सीखते हैं। स्तवन ने एक कागज पर यह लिख के दिखाया, क्या आप लोग शाम की सभा में आ सकते हैं? वो वहां से दूर नहीं है। हम आप लोगों को बाइबल देना चाहते हैं। इस बाइबल उस परमेश्वर के बारे में है जिसने आपको चंगाई दी है। उनका जवाब बहुत ही प्यारा था। उन्होंने लिखा, हम जरूर आएंगे और आकर इस बाइबल को लेंगे, पर क्या हमारे साथ हमारे सारे गूंगे बहरे दोस्त भी आ सकते हैं? उस शाम कुछ और बहरे गूंगे बोलने और सुनने लगे। वह समय बहुत अद्भुत था। उन तीन दिनों में अंधे देखने, बहरे सुनने, गूंगे बोलने और बहुत बीमार लोग चंगे होने पाए, यह सब कुछ पवित्र आत्मा ही की सामर्थ्य से हुआ। और क्या वह कीमती और सुंदर नहीं? उसने ये काम किए ताकि यीशु के नाम की महिमा हो। यूहन्ना 16:14। दूसरे अवसर पर मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश आमंत्रित किया गया कि मैं 3 दिन की सगह चलाऊं। पहले दिन सुसमाचार प्रचार करने के बाद हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सभा के अंत में एक स्त्री घबराती हुई मेरे पास आकर कहने लगी, क्या आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन वह कहाँ है? मैंने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह अकेली आई थी। पूछने के तुरंत बाद मैंने उसके पीछे देखा कि चर्च का एक स्वयंसेवक एक लंगड़े लड़के को उठाकर मेरी तरफ ले आ रहा था। मैं तुरंत आसानी से पहचान सका कि वह बच्चा अपाहिज था। उस बच्चे का नाम आज़ाद था, पर आज़ाद आज़ाद नहीं था। मैंने उसको मंच पर बैठाया और कुछ सवाल पूछे। मुझे पता चला कि आज़ाद जन्म ही से लंगड़ा था। उसके दोनों पैर विकृत थे और वह कभी चलने ना पाया और न स्वयं से खड़ा होने पाया। मैं घुटने पर आकर उसके पैरों को अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करने लगा, पीड़ित करने वाली आत्मा, यीशु के नाम में मैं तुझे बांध कर इसको छोड़कर निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। मैं तेरी शक्ति को जो उसके पैरों में है तोड़ देता हूँ। चंगाई की और पुनरुत्थान की सामर्थ इसके पैरों में बहकर प्रकट हो जाए। छोटी प्रार्थना के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोई फर्क नहीं हुआ। तब मैंने एक पैर को हाथों में लेकर उसे मोड़ने की कोशिश की। काफ़ी जोर लगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके दोनों टखने इतने खराब थे कि मुड़ नहीं सकते थे और उसके पैर किसी तरह से सीधे नहीं हो सकते थे। मैं विश्वास के कार्य में लगा रहा और मैंने उस लड़के को खड़ा करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। वह ऐसी हालत में कभी खड़ा नहीं हो पाता। कुछ और प्रार्थनाओं के बाद मैंने उसकी माँ को दे दिया और कहा, मैंने प्रार्थना की और मैं विश्वास में हूँ कि वह चंगा हो जाए। यह सभा का पहला दिन है। यदि उसे और प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप उसे अगले 2 दिन और ला सकती हैं। इस सभा में उन्होंने पहली बार यीशु का नाम सुना और वे 2 घंटों की दूरी पर एक गांव में रहते हैं। वह अपने बेटे आज़ाद को उठाकर अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसने आज़ाद को चरपाई पर बैठाया और रसोई घर में जाकर कुछ पकाने लगी। लगभग 15 मिनट के बाद उसे आज़ाद की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, मम्मी मम्मी जल्दी आओ। वह घबरा गई, दरवाजे के पास दौड़कर आई। उसने आज़ाद को देखा और आज़ाद अपनी आंखें उठाकर अपनी मम्मी को देखकर कहने लगा, देखो मम्मी, मैं चल सकता हूँ। वह एक हाथ से चरपाई के किनारे को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ हवा में था और वह धीरे धीरे चल रहा था। हमको मालूम नहीं था कि उसके घर में क्या चमत्कार हुआ। सभा के दूसरे दिन हम देर से पहुंचे। पहुंचने पर हमने आज़ाद की माँ को 400 लोगों की भीड़ के सामने रोते हुए और गवाही देते हुए देखा। वह इतनी जोर से रो रही थी कि मुझे उसकी हर बात समझ में नहीं आ पाई। मेरी पत्नी अभिलाषा मुझे बताने लगी कि क्या क्या हुआ। तब मैंने सोचा, अरे यह तो वही लड़का है। हमने उसके पास जाकर आज़ाद के पैरों को जांचा और वे पूरी तरह से चंगे होकर ठीक थे, कोई विकृति नहीं थी। यह डॉक्टरों की दृष्टि में अविश्वसनीय घटना है। परमेश्वर ने एक पल में नए जोड़, हड्डी, मांस इत्यादि की रचना की। वह बता रही थी कि उसने डॉक्टरों और फिजियोथेरेपी के लिए बहुत खर्च उठाया पर लाभ ना हुआ। यह चर्च में उसका पहला अनुभव था और मैं मानता हूँ कि चर्च में सब आने वालों के साथ ऐसा ही अनुभव होना चाहिए। अब वे यीशु पर विश्वास करते और लगातार चर्च आते हैं। मैं गवाही पर गवाही बता सकता हूँ, जब अंधे देखने लगते, जन्म से गूंगे बोलने लगते, दुष्टात्मा ग्रस्त लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपस्थिति के द्वारा बंधन से स्वतंत्र होते हैं। मैंने आपके लिए पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे होने के लिए ये दो गवाहियां लिखी हैं। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि लंगड़े चलने लगते या गांठ ट्यूमर प्रार्थना करते समय गायब हो जाती है, परंतु पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप में जानना है। उसकी सामर्थ को पाना मेरी सबसे बड़ी इच्छा नहीं, यद्यपि वह बहुत जरूरी है। उसकी मधुर उपस्थिति और व्यक्तित्व को अनुभव करना ही सबसे बड़ा धन है। मेरी घनिष्ठता जो उसके साथ है, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उसे और अधिक जानना चाहता हूँ और उसे और गहरी रीति से अनुभव करना चाहता हूँ। मुझे उसका और अधिक अभिषेक, उपस्थिति और सामर्थ्य चाहिए। मेरी भूख पवित्र आत्मा के लिए बनी रहती है और वही वास्तव में मुझे संतुष्ट कर सकता है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, आप भी उस मार्ग पर चलें। लेकिन यह विषय जो पवित्र आत्मा के ऊपर है, कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दिन हम उससे और अधिक जान सकते हैं। पवित्र आत्मा को जानने और अनुभव करने के लिए होने दे कि यह पुस्तक आपके लिए शुरुआती बिंदु हो, ना कि अंत।